यह प्रवचन विशाल प्रभु के द्वारा भागवतम क्लास मीरा रोड राधा गिरधारी मंदिर में 20/5/2012 संगति
तजेता
छोड़ देना चाहिए
मिथुन व्रतिना वैध या अवैध मैथुन कार्यों में लगे रहने वाले व्यक्तियों का मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति
सर्वात्मना
सभी प्रकार से नहीं विसृजेता काम्य लगाए बाह्य इंद्रियों को अकेले चरण घूमते हुए रहसि एकांत स्थान में चित्तम मन अनंत ईसे भगवान के चरण कमलों पर योजिता लगाए तत्प्रतिशो ये की कोटि के लोगों के साथ जो भवबंधन से मोक्ष के कामी हैं साधुषो ऐसे पुरुषों की चेता यदि प्रसंग संगति अनुवाद तथा परिभक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को विषयी जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करना चाहिए। यदि संगति करनी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। बोली प्रकार के सभी भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को विषय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में देखने में सुनने में बोलने में चलने में नहीं लगाना चाहिए। उसे सदैव एकांत स्थान में ठहरना चाहिए और मन को अनंत भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करना चाहिए। यदि संगति करनी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में लगे पुरुषों की संगति करनी चाहिए। तात्पर्य सौहरि मुनि अपने अनुभव से प्राप्त निष्कर्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हुए उपदेश देते हैं कि भवसागर को पार करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को विषयी जीवन और धन संग्रह में व्यस्त रहने वाले मनुष्यों की संगति त्याग देनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है। निष्किंचन जनश्च भगवत भजनोन मुखश्च पारं पारं जगम विषय भवसागरश्च संदर्शनम विषयनाथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षनतो अभिसार्य। वो भवसागर को पार करने की तथा बिना किसी लाभ के भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने की इच्छा रखने वाले के लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी लोगों को देखना तथा ऐसी प्रकार की रुचि वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विष पान करने से भी घृणित है। जो व्यक्ति भवबंधन से पूर्ण छुटकारा पाना चाहते हैं उसे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। उसे विषय पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। हर भौतिकतावादी व्यक्ति विषय यौन में रुचि रखता है। इस तरह सीधे साधे शब्दों में यह सलाह दी गई है कि साधु पुरुष को भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी आचार्य की सेवा करने के लिए कहते हैं, और यदि किसी की संगति करनी ही है तो भक्तों की संगति करनी चाहिए। तांदेय चरण से भी भक्त सनेवा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्त उत्पन्न करने के लिए अपने अनेक केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिससे ऐसे केंद्रों के सदस्यों से संपर्क बढ़ाने से लोगों को भौतिक कार्यों में अरुचि होने लगी। यद्यपि यह अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है, किंतु यह संगठन भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया से प्रभावशाली है और सिद्ध हो रहा है। कृष्ण भावनानुवृत आंदोलन के सदस्यों की क्रमशः संगति करने, केवल प्रसाद ग्रहण करने तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने से सामान्य लोग काफी ऊंचे उड़ जाते हैं। सौभरी मुनि को पश्चाताप हो रहा है कि गहरे जल में भी वे बुरी संगति में रहे और मैथुनरत मछली की कुसंगति से उनका पतन हुआ। एकांत स्थान तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक अच्छी संगति न मिले। ओम ज्ञानतिमिरान्तशलाकया स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं वदान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश सहीपं सागरदातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपादां सहगणं ललितां श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में सौवरी मुनि अपना अनुभव, उनका अनुभव के द्वारा जो उन्हें अनुभव से निष्कर्ष प्राप्त किया है उसका उपदेश दे रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस संसार में भवसागर को पार करना भी चाहता है तो वह कह रहे हैं, सबसे पहले संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना विमुक्षु, कि भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को विषय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति को छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्तियों की संगति होगी या जैसे जैसे लोगों की संगति होगी या वस्तुओं की संगति होगी, उसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। जैसे सौभरी मुनि हजारों वर्षों तक उन्होंने जल में तपस्या की, अपना मोक्ष साधने के लिए या अगला जीवन सुधारने के लिए, लेकिन जब उन्होंने जल में मछलियों का संघ को देखा तो उनकी कामना हुई विवाह करने की। तो जिन लोगों की संगति करते हैं उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी वस्तुओं को हम देखते हैं या सुनते हैं हमारी इंद्रियां इतनी बलवान है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अतिकर्षति, इतनी बलवान है कि बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी विषयों के तरफ आकर्षित करते हैं। केवल सौभरि मुनि ने देखा था कि मछलियां किस प्रकार से जीवन में सुख ले रही है, लेकिन हम लोग इस संसार में देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उनका अनुभव भी करना चाहते हैं, या कोई वस्तुओं को हम स्पर्श करना भी चाहते हैं कि जिसके द्वारा हमें आनंद प्राप्त होगा, लेकिन हम देखते हैं कि संसार में विषयों के द्वारा कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आनंद की प्राप्ति होती है तो बड़े बड़े संत महात्मा क्यों विषयों को, धन संपत्तियों को त्याग कर हरि भजन करने लगे हैं? क्योंकि विषयों में आनंद नहीं है, या इस संसार के कोई भी सुख जो है हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये संसार जिन्होंने बनाया है भगवान ने, वह कहते हैं कि संसार जो है दुखालयम अशाश्वत, यहाँ दुखों से परिपूर्ण भरा हुआ है, इसलिए न तो विषयों में सुख है न कोई भी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने में सुख है। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो उनका कर्तव्य है साधुओं की संगति करना चाहिए। रही चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यदि हम साधुओं की संगति करते हैं तो जीवन का जो परम लक्ष्य जो है वह हमें प्राप्त हो सकता है, और विषय लोगों की संगति करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। सैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार प्रावृतम, यदि हम साधुओं की संगति करते हैं तो मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल जाता है, और वही एक संगति हम कई धनी पुरुषों से करते हैं या विषयी लोगों से करते हैं तो हमें उसी प्रकार से हमारा मन उसी में लग जाता है। कभी कभी हम देखते हैं तो सौभरि मुनि तो मछलियों का संयोग को देखकर उनके तरफ आकर्षित हुए, लेकिन भौतिक संसार में भक्त लोग भी कभी कभी धनी लोगों की संगति करते हैं, या कोई सुंदर स्त्री है या सुंदर पुरुष जो है उनकी संगति करते हैं तो विषयों के तरफ आकर्षित होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं धनी पुरुषों का ऐश्वर्यों को कि ये लोग कितने सुखी हैं और इनके पास बहुत ऐश्वर्य है, तो ऐसे लोगों की संगति करते हैं तो हमें भी उसी प्रकार के धन जुटाने की लालसा जागृत होती है, लेकिन इस प्रकार के धन जुटाने में ही लगे रहेंगे तो हमारा जीवन का जो उद्देश्य जो है, या जिस उद्देश्य से हम लोग इस संस्था में जुड़े हैं वह हमारा उद्देश्य भूल जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग भी भगवान का प्रचार कार्य में उतनी रुचि नहीं लेते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन भौतिक संसारी लोग जो हैं उनकी संगति करने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी संगति से उन्हें भौतिक लाभ होता है, लेकिन भौतिक लाभ से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा का कल्याण चाहते हैं उसे साधुओं साधुओं के द्वारा भगवान की कथाओं को श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी वर्णन करते हैं, निष्किंचन जनस्य भगवद् भजनोन्मुखस्य, जो भगवान के शुद्ध भक्त जो है ऐसे भक्तों के मुखारविंद से हमें भगवान के दिव्य संदेश को या भगवान की दिव्य लीला कथा जो है उसके बारे में हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्रुणवंता सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन वदन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति कल्मषः। जब हम भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करते रहते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, क्योंकि भगवान ने अपने नामों में इतनी दिव्य शक्ति भरी हुई है कि उनका एकमात्र नाम कर्णेन्द्रियों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट होता है तो वह एकदम शुद्ध बना देता है हृदय को। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वान भाव सरोवर धुनोति शमलम कृष्ण शरीरस्य यथाश। जब हम भगवान की इन दिव्य लीलाओं को कर्णेन्द्रिय के मार्ग से अपने हृदय में आविर्भूत करते हैं तो भगवान और भगवान की जो कथा जो है यह अभिन्न है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान स्वयं अपने हृदय में आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं और उसे हृदय का की शुद्धिकरण होती है। और जब एक बार यदि हृदय शुद्ध होता है तो दोबारा उसमें विषय प्रविष्ट नहीं होते हैं। लीला कथाओं का श्रवण करने से हृदय का शुद्धिकरण होती है, लेकिन लीला कथाओं का श्रवण नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि नहीं मंदिर में रहने से बहुत तकलीफ आती है, कभी कभी कोई प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है या अनुकूल परिस्थिति उनके लिए भजन करने के लिए नहीं रहती है मंदिर में, कभी सेवा ज्यादा रहती, कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि हम क्यों इसी में पड़े रहे, हम तो एकांत में जाके कहीं भजन साधना करेंगे या तपस्या में लगे रहेंगे या ध्यान करेंगे, लेकिन ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। स्वयं सौभरि मुनि जो जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की वह अपना अनुभव बता रहे हैं, वह एकांत में ध्यान कर रहे हैं और वह भी वृंदावन में कोई लोग उनको परेशान नहीं करे, क्या उनका ध्यान को भंग न करे, इस उद्देश्य से वह यमुना जी के जल के नीचे ध्यान कर रहे, तपस्या कर रहे। लेकिन उन्होंने जब देखा मछलियों का संभोग को कि जब मछलियां कितना सुख भोग रही है तो उन्हें इस प्रकार की काम वासना जागृत हुई, और यदि हम भी उसी प्रकार से एकांत में जाके कई प्रकार की साधना करने के लिए जाएंगे तो हम साधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं इतनी बलवान हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अभिकर्षित, बड़े बड़े विद्वान लोगों को विषयों की तरफ आकर्षित करते हैं। तो सौभरि मुनि ने देखा केवल, तो हम तो देखते भी हैं सुनते भी हैं, कभी कभी ऐसी इच्छाएं प्रकट होती हैं कि कोई सुंदर वस्तु रहती है तो सुंदर वस्तु को स्वीकार करने की या उसे स्पर्श करने की भी इच्छा होती है। जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है कि ये जो पांच प्रकार के विषय जो है बहुत ही खतरनाक है, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जैसे शब्दों को सुन के सुंदर मधुर ध्वनि को यदि हम सुनते हैं तो उस ध्वनि को सुन के हमें लगता है कि नहीं कोई जो वस्तु है या कोई स्त्री है या कोई पुरुष तो है, कहीं हम लोग ध्यान में बैठे तो लगता है कि नहीं उधर से कोई आ रहे हैं, तो उसको हमें देखना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि उस शब्द को सुनते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, हिरण जो होती है सुंदर ऐसा मधुर ध्वनि को सुनती है, संगीत को, और जो पार दिन आते हैं वह ऐसे उसको लिए फांसे डाल के रखते हैं कि जैसे ही वह सुंदर ध्वनि को सुनने के लिए आती हैं उसमें वहां पड़ के वह फंस जाती है। और स्पर्श करने का कभी कभी हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में कि हमें तो कोई देख नहीं रहे हैं, चलो कोई सुंदर पुरुष है या सुंदर कोई स्त्री जो है उसको स्पर्श कर लेंगे, कुछ नहीं होगा स्पर्श करने से। लेकिन कभी कभी हम किसी को किसी की इच्छा के बगैर यदि स्पर्श करने के लिए जाते हैं तो कानून के अपराधी बनते हैं और उससे हमें शिक्षा मिलती है। कभी शिक्षा मिलती है या कभी इस प्रकार का हमें अपमानित होना पड़ता है कि जिससे हम संसार में नहीं रह सकते हैं। और उसके कारण कभी कभी हम देखते हैं सुनते हैं आत्महत्या तक भी करनी पड़ती है। शब्द स्पर्श रूप कभी कभी देखते हैं कि पतंगियां जो होती हैं अग्नि की तरफ इतने आकर्षित होती हैं उस रूप को देख के, और जैसे ही उसकी सुंदरता पर रूप को देख के वह मोहित होती है, अग्नि जाल के आग में जाके वह फंस जाती है। और उसी प्रकार से रस कोई भी मछलियां जो होती हैं तो मछलियां पकड़ने वाले जो होते हैं तो वो कांटे में लगा के उसमें कुछ खाने का या रस या उसमें कुछ मांस का टुकड़ा वगैरह डालते हैं, तो जैसे ही मछली उसको पकड़ती है रस का आस्वादन करने के लिए तो वह उसमें कांटे में फंस जाती है। और गंध हम देखते हैं कि इस संसार में कोई गंध का सुगंध का सेवन करना चाहते, जैसे भवरा जो होता है कमल के फूल के ऊपर बैठता है गंध का आस्वादन करने के लिए, सुगंध लेने के लिए, इतना वह उसमें मोहित होता है तो कब शाम हो जाती है सूर्य अस्त होता है उसको पता नहीं चलता है। तो वैसे ही जैसे सूर्य अस्त हो जाता है उसमें जाके वो फंस जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य इस संसार के विषय में फंस जाता है। हम देखते हैं कि सभी प्राणी एक एक विषयों में फंसकर उनका नाश हुआ, लेकिन मनुष्य जो है ये 500 विषयों का सेवन करना चाहता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबकी अनुभूति करना चाहता है इस भौतिक संसार में। तो जब सभी विषय उनके पीछे लगे हुए हैं तो हमारा क्या होगा, आत्मा का आत्मघाती बन जाएंगे इस प्रकार से विषयों का सेवन करेंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कमी इन विषयों से बहुत सावधान रहना चाहिए और उनके प्रति इतने आसक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग जो हैं गृहस्थ जीवन में भी हैं, गृहस्थ आश्रम में विषयों का सेवन करना होता है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि विषयों का सेवन करो वह पाप नहीं है, लेकिन उनके प्रति इतने आसक्त बनना जिससे जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं तो जिससे आत्मा का भ्रम होता है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है यथाशक्त विषय बुंद अनासक्त हिया, कि हमें विषयों का जो गृहस्थ लोग जो है सेवन करते हैं विषयों का, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्ति एकमात्र भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में भगवान के कार्यों में भगवान के प्रचार कार्यों में अपने आसक्ति लगाना चाहिए। तो हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं, अन्यथा सफल नहीं बन सकता है। इसलिए हमें सदैव साधुओं की संगति करते हुए अपने लिए मोक्ष का द्वार किस प्रकार से खुला रहेगा उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है, यदि हम भवसागर को पार करना चाहते हैं तो भक्तों की संगति और भक्तों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। महारानी कुंती जी भी उनकी प्रार्थना में वर्णन करती हैं, श्रुणवन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्ष्म सर्व स्मरन्ति वन्दन्ति तवे हिते जना सैव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। के हे कृष्ण हे गोविंद, जो कोई भी आपकी इन दिव्य लीला कथाओं का शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करता है या जो सुना हुआ है उसका गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, या जो सुना है श्रवण किया है उसका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसे स्मरण चिंतन के द्वारा भी या तो ऐसे करते हुए भक्तों को देखते हैं, सैव पश्यन्ति जो देखते हैं। कभी कभी लोग आते हैं मंदिर में, भगवान के भक्त लोगों को देखते हैं, भगवान के भक्त लोग कितने शांत चित्त से भगवान का गुणगान श्रवण कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार से दूसरे बाहर के लोग देखते हैं, तो ऐसे देखने वाले लोगों को अभी भवसागर पार होता है। सैव पश्यन्ति चिरं तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। ऐसे देखते हैं, देखने मात्र से ही तो भक्त लोग भक्ति करने सीख जाते हैं कि भक्तों का इतना प्रभाव पड़ता है। दर्शन मात्रों से भक्तों के दर्शन मात्र से उनका हृदय पवित्र होता है, क्योंकि भौतिक संसार में हम देखते हैं कि जो भौतिक संसार में जो कर्मी लोग जो है वह इतने विषयों के प्रति आसक्त रहते हैं, अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, परिवार में लगे रहते हैं, लेकिन जब उनको हम आमंत्रित करते हैं कि रविवार के प्रोग्राम में या भगवान के दर्शन करने के लिए, तो जब वो भगवान के दर्शन करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान का प्रसाद का ग्रहण करते हैं, तो उससे उनका हृदय की शुद्ध किरण होती है सुनने मात्र से। और हृदय की शुद्धिकरण होती है तो वह भी इसमें जुड़ जाते हैं भक्ति कार्य में, इतना भक्तों का प्रभाव पड़ता है। और विशेष करके प्रभुपाद जी की कृपा है, और प्रभुपाद जी की कृपा से आप देखते हैं कि इस संसार में सारे विश्व में लोग जो शूद्र हैं, चांडाल हैं, वह लोग भी भगवान के भक्त बने। किरात हुना आंध्र पुलिंद पुलकसा आधीर शुंभा यवना कसादय ये अन्नेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। जो भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा जिन्होंने सुना, जैसे हम देखते हैं चांडाल लोग, यवन लोग, क्रिश्चन लोग, ऐसे लोग भी भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद की संगति करके वह भी शुद्ध बने। तो संगति का प्रभाव, साधुओं की संगति करते हैं तो भगवान के भक्त बनते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यदि विषय लोगों की संगति करते हैं तो हमारे लिए नरक का द्वार खुल जाता है। कभी कभी भक्त लोग भी इस प्रकार से विषय लोगों की संगति या स्त्रियों की संगति में पड़ के उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। न तो कभी मंदिर के रहते हैं, न कभी गृहस्थ आश्रम के रहते हैं, न तो ठीक से गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान का भजन कर सकते हैं, न तो मंदिर में रह के भगवान का भजन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें संगति ध्यान देना चाहिए। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत संग लोगों का संग त्यागना चाहिए, उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना चाहिए। यदि कोई साधु या भक्त भी यदि असत्संग मार्ग से जा रहा है तो हमें उसे सुधार करने का प्रयास करना चाहिए और उनकी संगति नहीं करना चाहिए, लेकिन संगति उनको देना चाहिए। कैसे भक्त जो हैं कभी कभी एक्सीडेंटली वहां गिर जाते हैं, तो उनका वह गिरना नहीं है, अगला जीवन में भगवान उनको चांस देते हैं, क्योंकि भक्तों ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, समर्पण की भावना है भगवान के प्रति, तो वहां समर्पित भावना के कारण भगवान उनकी रक्षा करते हैं, उनका पतन नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि विश्वामित्र का पतन हुआ, सौवरी ऋषि का पतन हुआ, लेकिन भगवान के जो भक्त जो होते हैं उनका पतन नहीं होता है, क्योंकि वह हमेशा श्रवणम कीर्तन में लगे रहते हैं और भगवत सेवा में ही अपना जीवन बिताते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में कि भरत महाराज भगवान के परम भक्त थे और परम भक्त होने के कारण उन्हें हिरण के गर्भ में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि भरत महाराज भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने अपने पिता के द्वारा ऋषभदेव के द्वारा इस भगवत भक्ति का उद्देश्य हो, भगवान के संदेश को, क्योंकि ऋषभदेव जी भी भगवान के परम भक्त थे, तो उनके संदेश को उन्होंने सुना, राजा थे भरत महाराज, और जब संदेश को सुना, क्योंकि राजा महाराजा लोग ऐसी सभा में अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को या अपनी प्रजाओं को भी बुलाते थे और उनको उपदेश देते थे, तो राजा ऋषभदेव जी ने भी अपने पुत्रों को बुलाया और उनको उपदेश दिया। नायम देहो देवाजान लोके कष्टान कामान विडंबुजाय, कहे पुत्रो इस भौतिक संसार के जो सुख जो है सभी को कालक्रम से प्राप्त होते हैं, जैसे सुअर है कुत्ते हैं उनको भी यह विषय की सुख प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य इस संसार में विषयों का सुखों का सेवन करना चाहते हैं वह उन्हें भी वह सुख प्राप्त होते, वैसे ही पशु योनियों में भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कपुत्रो इस विषय सुखों में आसक्त नहीं रहना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्ध दैहिक ब्रह्म सौख्यम करना, कि ब्रह्म सुखों के लिए हमें तपस्या करना चाहिए। तुमके पुत्र भरत महाराज पिता का उपदेश को सुनकर सब राजपाट वगैरह सब छोड़ दिया और गंडकी नदी के किनारे जाके भगवान का भजन करने लगे। जब भगवान का भजन करते थे और स्नान संध्या भी करते, जब भी उन्होंने स्नान संध्या कर रहे थे, जब भी एक हिरण को देखा जिसके गर्भ में बालक था, और जैसा ही उस हिरण ने शेर की आवाज सुनी तो वह घबरा गई और अपने प्राण बचाने के लिए नदी से वह दूसरे किनारे पर छलांग लगाया। जैसे ही उसका वह गर्भपतन हुआ तो भरत महाराज जहाँ स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हिरण का बालक पानी के प्रवाह में वो खींचा जा रहा है, न तो उसके कोई अभी उसकी माता भी नहीं, क्योंकि उसकी माता दूसरे बाद जाकर वहाँ उसका मृत्यु हो गया। तो भगवान के भक्त जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं, तो उन्हें उस हिरण बालक के प्रति दया आई और उन्होंने अपने आश्रम में लेके गए और आश्रम में वज्रन बालक के साथ सभी प्रकार के जो कार्य थे उनकी पूजा संध्या वगैरह सभी उसी बालक के पास में ही रखे सब कुछ प्रवृत्ति करते थे। लेकिन जब हिरण बालक बड़ा हो गया तो वह कहीं दूर चला गया। भरत महाराज देखने लगे कि मेरा हिरण बालक कहाँ गया और उसी की सोच में विचार में उन्होंने अपना देह का त्याग किया। तो उन्हें भी हिरण का जन्म लेना पड़ा। देखो जैसे जैसे विषयों के साथ में हमारी मन लगता है या चित्त लगता है उसी के अनुसार हमें अगला जन्म भी मिलता है। यम यम वापि स्मरणं भाव त्यजन्ते कलम कलेवरं तम तमेव विद्यन्ते सदा तद्भाव भावितम्। जिन जिन भावों का विचारों का चिंतन करते रहेंगे उसी प्रकार से हमें अगला जन्म भी प्राप्त होगा। तो भरत महाराज को हिरण का जन्म प्राप्त हुआ लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति की थी, जो भगवान के विषय में सुना था। तो हिरण के जन्म में भी वह उन्हीं विचारों का स्मरण करती और स्मरण करते करते उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो उन्हें अगला जन्म ब्राह्मण परिवार में प्राप्त हुआ। और उन ब्राह्मण परिवार में रहते वह जन भरत के रूप में दूसरी गई उनके माता पिता शिक्षा देते थे, उन शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण नहीं किया और केवल एकमात्र भगवान का चिंतन करते रहे। तो हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त जो होते हैं इस भौतिक संसार में हम लगता है कि उस महान भागवत भरत महाराज का पतन हुआ लेकिन उनका पतन नहीं हुआ, हिरण के जन्म में भी भगवान का उनका स्मरण बना था। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं तो जिन्होंने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया है, भक्त कभी कभी अकस्मात कभी कभी पतन हो जाता है लेकिन भगवान के भक्तों का पतन नहीं होता है क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण किया है। तो देवता लोग भगवान की स्तुतियों में कहते हैं यह अन्ने च अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्ध हे प्रभु, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का पतन होता है क्योंकि वो भगवान के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त जो हैं, जिन्होंने भगवान के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण किया है उनका भार सब भगवान वहन करते हैं। इसलिए हमें भगवान के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। समाश्रिताई पद पल्लवम पल्लव, क्योंकि भगवान के चरण जो है यही एक नौका का कार्य करती है इस भवसागर को पार करने के लिए। और जब हम इस नौका का आश्रय ग्रहण करेंगे, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी ने एक नौका लाएंगे, चैतन्य महाप्रभु जी ने आप सबको मालूम है, जो पहली बार आए होंगे उनको मालूम नहीं होगा, सभी लोग तो सब पुराने ही लग रहे हैं ना, नए भी कोई है क्या भक्त लोग नए आज पहली बार आए हैं? सब तो पुराने हैं, पहली बार वाले बहुत कम हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने नाव रूपी नौका लाया है कि जावे भाई भव सिंधु पार, इस भव सागर को यदि पार करना है तो भगवान की चरणारविंद का आश्रय और भगवान के नामों का समाश्रिताई पद पल्लवम पल्लवम पुण्येशो हरे मुरारे, भगवान का आश्रय ग्रहण करना। कभी कभी भक्त लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर का प्रसाद भी खाते हैं, मंदिर में ही रहते हैं, सब कुछ भगवान की सेवा में रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग होते हैं वह भक्ति में उन्नति नहीं करते हैं, जैसे कि वैसे ही रहते, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना या रिलीज भगवत गीता, उनको भी लगता है कि नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो हमें खाने पीने का तो मिलता है। लेकिन यह प्रभुपाद जी ने जो आश्रम बनाया है या संस्था बनाया है केवल खाने पीने के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक उन्नति करके भगवत धाम में वापिस जाने के लिए बनाया है। खाना पीना तो कहीं भी मिल जाता है सभी लोगों को मिल जाता है। लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, जिन्होंने जन्म लिया है सबके लिए विषय सर्वतश्चा विषय खलु सर्वत, ये भौतिक संसार के विषय जो है या खाना पीना सब जो है ये सर्वतश्चा सभी योनियों में है या सभी लोगों में है, इंद्र लोक तक भी जाओगे तो भी ये सब विषय वास्तव ये सब मिलेगा आपको। लेकिन भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने में और दूसरी योनियों में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मनुष्य शरीर जो है इतना दुर्लभ है, उसमें भी साधु संतों की कृपा से प्रभुपाद की कृपा से इसमें जुड़े हैं लगे हुए हैं, तो हमें इसका चांस नहीं होना चाहिए। तो मंदिर में रहते हैं सेवा करते हैं सब, तो उसके उससे कहीं हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा। तो उद्धार कब होगा, भो सागर को पार कब होंगे, जब हम सुनेंगे पुण्य यशो हरे मुरारे, भगवान की पुण्य यश कीर्तियों का श्रवण कीर्तन करेंगे गुणगान करेंगे तो हम भवसागर को पार करेंगे। कोई कोई भक्त लोग होते हैं उनको सुनना अच्छा नहीं लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता है तो समझ लो भगवान, क्योंकि ये भगवान को हम सुन रहे हैं और किसी को नहीं सुन रहे। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम जो है भगवान को सुन रहे हैं और भगवान को सुनेंगे बहुत श्रद्धा के साथ में तो हम भवसागर को पार करेंगे। भगवद गीता में भगवान भगवद गीता को श्रवण करने के लिए ही कह रहे हैं भगवान, श्रुणु मया सक्त मना पार्थ योग युंजन मदाश्रय, यदि भक्ति योग की हम शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें भगवान को सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं वह हम सुने, तो जब इस प्रकार से हम सुनते रहेंगे तो भवसागर को पार करेंगे। इसलिए भगवान का जो संदेश जो है उस संदेश को शिरोधारी करना चाहिए, सुनना चाहिए। यदि हम भगवान को सुनते हैं तो भगवान हमें सुनेंगे, है ना? नहीं तो हम मंदिर में भगवान के सामने जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कुछ कृपा करो, तो भगवान कृपा करेंगे कब, जब आप उनको सुनोगे तो भगवान आपको सुनेंगे और 100% सुनेंगे भगवान। और भगवान शपथ लेके कहते हैं कि मैं भक्तों को सुनूंगा, और इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं मन मना भो मद भक्तो मध्याज माम नमस्करो माम वैसे सत्यम ते प्रीति जाने प्रियोसिमि, हे अर्जुन आप मेरे प्रिय भक्त हो सखा हो, इसलिए आप यदि मुझे सुनते हो मन मना भो मद भक्तो मेरे भक्त बनो और अपना मन यानी चित्त यदि आपका चित्त मुझे समर्पित करते हो तो मैं अपने आप को स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। यदि भगवान आपको समर्पित कर देंगे तो आप तो भवसागर आसानी से पार हो जाओगे। इसलिए हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस भौतिक संसार की जो धन संपत्ति है या भौतिक संसार के विषय जो है इनका सेवन करेंगे तो हम भगवत धाम में जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी संसार में रहना पड़ेगा या इससे भी नीचे गिर जाओगे। इसलिए हमें भक्तों की संगति में भगवान की इन दिव्य लीला कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। और यहाँ सौभरी मुनि की यहाँ अनुभव है कि हमें एकांत में रहके विषयी जीवन बिताने से अच्छा है या ध्यान में रहने से अच्छा है कि भक्तों की संगति में रहके, चाहे उस भक्तों की संगति करने में हमें प्रतिकूल भी वातावरण हो तो भी भक्तों की संगति में रहना चाहिए। कभी कभी हम मंदिर में रहते तो असुविधा जनक वातावरण देखते कि नहीं मंदिर में रह के क्या करेंगे, भक्त लोग परेशान करते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी भजन करेगा, है ना? जिनकी पत्नी अच्छी है भगवान का भजन कर रही है, बच्चे लोग भी भगवान का भजन कर रहे हैं, माता पिता भी भगवान का भजन कर रहे हैं, ऐसे अनुकूल परिस्थिति में कोई भी भगवान का भजन करेगा। लेकिन जिनके यहाँ अनुकूल परिस्थिति नहीं है ऐसे परिस्थिति में हमें भजन करना, जैसे देखते हैं हम नामदेव महाराज जो हैं उनकी पत्नी वगैरह सब उनके लिए बहुत अनुकूल थी, बहुत सुंदर थी उनकी पत्नी, अनुकूल थी भगवत भजन करने में। लेकिन वही तुकाराम महाराज देखते हैं तो उनकी पत्नी कर्कशा थी, लेकिन हर हमेशा उनको कटु बोलती थी, उनको सताती थी, उनको भजन साधना नहीं करने। फिर भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह भगवान के भजन बने और भजन किया और भगवान की शुद्ध भक्त बने। तो प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में कोई भी भजन करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी रह के हमें भजन साधना करना चाहिए। यहाँ के जो भक्त जो हैं, पहले उनके लिए इतनी अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, क्योंकि भक्त लोग तो पहले यहाँ रहते भी थे और खूब मच्छर काटते थे, कितनी गंदगी थी, इधर पीछे वो नाला भरता था तो उसमें इतने मच्छर, आप मंदिर में बैठोगे मंगल आरती के बाद तो आपको कितने सारे मच्छर काटेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं थी। तो ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भक्त लोग भजन साधना करके आज भगवान का इतना बड़ा भव्य मंदिर यहाँ बन रहा है, गिरधारी जी की कृपा है। ये प्रतिकूल परिस्थिति कभी कभी ऐसी होती है तो उसमें भी हमें उस परिस्थिति को सहन करते हुए भक्तों की संगति में रहना चाहिए। लेकिन अनुकूल स्थिति में यदि भक्तों की संगति नहीं मिलती है तो उस स्थान में नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि वह उनके लिए जल में समाधिस्थ होकर साधना करना उनके लिए अनुकूल थी, लेकिन वह अनुकूल परिस्थिति उनके लिए पतन का कारण बना, क्योंकि भक्तों की संगति नहीं और ना तो भगवान की लीलाओं का गुणगान श्रवण करने के लिए उनको मिलता था। लेकिन यहाँ भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने के लिए भी मिल रहा है और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करने के लिए मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ उनके भावार्थ में वर्णन करते हैं, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को क्रमशः संगति करने और केवल प्रसाद करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से सामान्य लोग जो हैं वह इस भौतिक संसार की जो परिस्थिति से काफी ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए हमें भक्तों की संगति करना चाहिए और भगवान को सुनते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, क्योंकि विषय जो है, इंद्रिया जो इतने बलवान रहती है, यदि एकांत स्थान में भी रहते हैं तो हर कोई वस्तु व्यक्तियों को सुंदर वस्तुओं को देखना पसंद आता है, क्योंकि इंद्रिया को लगता है कि सुंदर वस्तुओं को देखो तो उस वस्तुओं का यदि वह सेवन करता है विषयों का तो उनका पतन का कारण बनता है। लेकिन सबसे सुंदर जो है, जिन्होंने ये शरीर भी बना है और जिन्होंने चक्षु भी दिया है, तो उन जिन्होंने दिया है उनकी सुंदरता को हमें देखना चाहिए। कितना अच्छा सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह हैं। यदि उन विग्रहों को हम देखेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। लेकिन सौभर मुनि वहाँ बैठ के दल में न तो भगवान का वो सुंदर विग्रह के दर्शन कर रहे थे, वह तो दल में बैठ के वो मछलियों का संभोग कर रहे थे। कलयुग में ध्यान की विधि विधान नहीं, जब भी ध्यान की विधि विधान है तो कलयुग में कहां से ध्यान लगेगा, क्योंकि ध्यान लगना बहुत मुश्किल है। सौभरी मुनि को ध्यान नहीं लगा, विश्वामित्र को भी ध्यान नहीं लगा, ध्यान की स्थिति में बैठे थे पोजीशन में समाधिस्थ, लेकिन उनको ध्यान नहीं लगा। ध्यान में वह केवल एकमात्र ऋषि मुनि लोग भी भगवान का चिंतन करते रहते थे, लेकिन वह चिंतन की जो क्रिया जो है उससे हृदयों का मार्ग होना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों, लाख वर्षों तक करोगे तो भी चित्त की शुद्धिकरण होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन का कीर्तन करोगे या भगवान का नाम का गुणगान करोगे, उससे चित्त की गुणगान करने से, श्रवण करने से चित्त की शुद्धि होती है। क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। कृष्ण का नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जब कृष्ण का शब्द नाम जो है कर्णेन्द्रिय से प्रविष्ट होता है तो हृदय में जाके हृदय की शुद्धिकरण होती है। जैसे हम देखते हैं बारिश में बरसात का पानी जो आता है, सब वो देखोगे आप धूल मिट्टी वाला चाय के जैसा आपको गंदा दिखेगा, तालाब का पानी भी शुरुआत में बरसात का, और उसको कोई केमिकल्स के द्वारा उतना बड़ा तालाब या नदी का पानी को शुद्ध करना अशक्य है। और जब शरद ऋतु का एक बरसात भी आता है तो देखते हैं एक बरसात से ही सारा पानी एकदम स्वच्छ होता है, उसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हो। वैसा ही भगवान का नाम जो है हृदय में प्रविष्ट होता है तो अनंत अनंत वर्षों से, जन्मों से हृदय में कौन से जन योनियों से आए हैं क्या पता है। लेकिन कोई कितने कुत्ते बिल्ली की योनि से आया है, कोई कौन से शेर की योनि से आया है, कोई पता नहीं। लेकिन कभी कभी भक्त लोग उनकी अनुभूति करते हैं क्या कौन व्यक्ति कौन सी योनि में से आया होगा उनके कर्मों के अनुसार। जैसे कि पिछले जन्म में कुछ कर्म किया होगा उसी के अनुसार उनके कुछ भाव इस जन्म में दिखते हैं। तो उसे ध्यान योग से या तपस्या से हृदय की शुद्धिकरण नहीं होती है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से हृदय की शुद्धिकरण होती है। शरीर लक्ष्य यथा शरद, जिस प्रकार से शरद ऋतु का बरसात से जल की शुद्धिकरण होती है, वैसे ही हृदय की शुद्धिकरण होती है भगवान का नाम का कीर्तन के द्वारा। इसलिए हमें भगवान का नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए सदैव। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में है अमानिना मानदीन कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान का नाम का कीर्तन में लगे रहना चाहिए। रुचि जागृत होती है भगवान के साथ, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ हम बैठ के नामों का उच्चारण करेंगे तो भगवान के नाम में रुचि बढ़ेगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गिरिधारी की, गौरताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, और प्रेमानंदे।